कब आई?
मैं आई के दो तीन दिन हुए, तीन दिनों पे हम लोग को
अनुक्रमित। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो,
सबसे सरल उपाय है सतान प्रसंगा वेद संगत, जो सत्संग जो शुद्ध वैष्णव का मुंह से जो मेरी कथा में अंदाज करती है वो कथा में अंदाज के तुम स्नान कर लो। बात केवल करना अगर श्रवण करोगे उसको द्वारा ही श्रद्धा रति और भक्ति वो कथा के द्वारा प्राप्त होगा। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक में कहते हैं कि सन्मुख रीतम अवधि वार्ता तेरे सुख वैष्णव का भार देने से जो आपकी कथा की भंडार की विकल्प किए अगर उसको सुन ले तो अपने आप उनको तत्व ज्ञान हो जाए। अगर हमें कोई तत्वोत्तर प्राप्त करने के लिए कोई चिंता नहीं चाहिए केवल करना है सब जिसको बताए कृष्ण रस मत्तावति क्रियता उत्तर क्रियति लगते तत्व मूल्य वेगला कोटि सुकृत रत्न लगते जिसको राजा महाराज कहते हैं। अगर हमें कोई पूर्व पूर्व जन्म का भाग्य से ब्रह्मांड करने के बहुत भाग्यवादी अगर ब्रह्मांड भ्रमण करते करते अगर वास्तव रूप में कृष्ण भक्ति रस द्वारा नदी जिसका भक्ति संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस द्वारा संपूर्ण जो डूबे हुए संपूर्ण जो शराब होते अगर ऐसे भक्त का अगर संग्रह मिल जाए इसके लिए कहते कोटि सुकृत रत्न अलग करते करोड़ करोड़ जन्म का सुकृत द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होगा अगर ऐसे कृष्ण भक्ति असभाविता अगर भक्त का संग्रह मिल जाए तो उसको द्वारा उसे और श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन यह वस्तु तो सचमुच से जिसको जितना ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिला है और सचमुच से ऐसे शुद्ध भक्तों का मुखार विद से उनको भगवत भगवत कथा सुनने को मिला केवल यह चीज तो वही व्यक्ति समझ सकते हैं वास्तव रूप में कृष्ण रस भक्ति भक्तों का संग से सचमुच से जीव को इतने महान वस्तु की प्राप्ति होती है केवल वही लोग समझ सकते हैं लेकिन और दूसरे लोग भी समझ सकते हैं ये चीज। इसलिए बहुत बड़ी वस्तु है बहुत बड़ी वस्तु है। इसलिए वहां पर से ब्रह्मा जी कहते हैं सन्मुख रीतम भवति वार्ता। इसलिए जो आपका भक्तों का मुखार विद से जो कथा निकल रही है कई सब सिखाने सीखा कहते स्थान में रहते हैं स्थान में रहते हैं मतलब भगवान हमें इसी स्थिति में रहते उसी नहीं रह रहे ऐसे नहीं कभी कभी हम समझ सोचते हैं अभी तक हमारा स्थिति इतना अच्छी रहेगी और हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी ना फिर खूब हम रहेंगे खूब भक्ति करेंगे। लेकिन हमारे प्रभा जो विद्वल से वो उसमें रहते हैं कहते हम इसी स्थिति में रहने पर हमारा अच्छा होगा प्रभु हमें उसी स्थिति में रखते हैं जिसका हमारा अच्छा होगा यह समझ कर भजन करो आगे कोई अच्छा स्थिति आएगा फिर भजन करेंगे नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता भजन के द्वारा ही अच्छी स्थिति बन सकती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर कहते हैं स्थानीय स्थिता स्थानीय स्थिता मतलब स्थान में रहते हैं वे कहाँ पर रहे कहते रहेंगे कहाँ पर तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कहते जहाँ पर केवल भजन करने साधु रहे विश्वनाथ डायरेक्ट कहते हैं कोई तीर्थ भ्रमण करने का जरूरत नहीं आज ये भी तीर्थ जाएंगे कल वो तीर्थ जाएंगे कल अयोध्या मथुरा माया मां तीर्थ सदा रहता हूँ अयोध्या मथुरा माया काशीकांति अयोध्या द्वारा आज जता तुम ही कहा भगवान के सतल बार बारे मुक्ति लाभ के बार करे भक्तों ने कहा कहते मां तू सोचते हो इतने सारे तीर्थ तुम काम करके चार मुक्ति दी जाएगी भक्ति प्रभा तो कहते हैं कि एक सतल तब भ्रमा निराधार तो कहीं समा चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे तीर्थ भ्रमण करने पर चित्त की स्थिरता नहीं होगी बल्कि चित्त की चंचलता बढ़ जाएगी। प्रत्येक प्रतीर्थ पर साधु संग साधु संग के अंतर्गत श्री कृष्ण भजन मंत्र तीर्थ का जो असली फल है वैष्णव संग है जथा तीर्थ जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर रहने के लिए साधु संग करने के अंतर तीर्थ घूमने का जरूरत नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती डायरेक्ट यहाँ पर कहते हैं कोई तीर्थ जाने का जरूरत नहीं चतुर्बल कितने खाली शांत और स्थिर तालाब का जहाँ पर वैष्णव लोग वही बरसात देख रहे हैं फिर भूमि तथा वृंदावन गिरी तथा गोवर्धन वही पर विराज गोवर्धन वही पर राधा कुंद श्याम सुंदर सात प्रकट भी साक्षात आदि वही पर आनंद के सरदार है जहाँ पर सुख वैष्णव है इसे इधर उधर नहीं धूमधाम करके वैष्णव को चरण में रह करके उनका चरण में बैठो बैठ करके भगवत करता इसलिए तब उसने बताए नमः एव जीवंती क्या कहता है जीवंती कर जीवन धारण करने चाहिए जैसे हमारा रोटी ही जीवन है चावल ही जीवन है जैसे एक दिन अगर हम चावल में रोटी नहीं खाए खाए चावल खाए रोटी 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 करते जाए कर उसी तरह का जिन जिन्होंने भगवत कथा को ही अपना जीवन बनाया अगर एक दिन अगर सुना वैष्णव लोगों से कथा सुनने को नहीं मिले ऐसे लगे कि आज पूरा जीवन हमारे बेकार हो गया आज हम कथा नहीं सुन पाए इसलिए कहते जीवन की जो भगवत कथा को ही जो जीवन बनाए और जीवन की उसका दूसरा अर्थ सुना सुना कहते हैं फिर चिंता रहोगे फिर तो फिर पिता का संपत्ति प्राप्त होता है पुत्र को पिता का संपत्ति प्राप्त करने के लिए जिंदा रहना चाहिए अगर जिंदा नहीं रहेगा बन जाएगा तो पिता का संपत्ति मिलेगा कैसे अगर वो प्रेम से बांधना चाहते हैं उनको जीवन धारण करना चाहिए मतलब भक्ति पथ में स्थिर रूप में उसको रहना चाहिए कोई इधर उधर हुआ भक्ति पथ की छोड़ कर मेरा जीना कितना भक्ति का जीवन कितना कष्ट का ये बेकार है लेकिन यहाँ पर बता रहे तन मन मनोही तीन चीज को द्वारा कथा सुननी चाहिए कभी साइंस करके सुनेंगे कथा का नाम सुनते हैं नहीं कृतज्ञता मतलब जहाँ सैनिक नियम में कथा कर सुनोगे इसका मतलब है कथा में आ करके जहाँ पर भक्तों का मुखार विधर से भगवत कथा की मंदार की नदी रहती है वहाँ पर आकर कितना मतलब सैनिक से वहाँ पर आओ आ करके वहाँ पर जो कथा वाचक जो कथा श्रवण करते हैं उनको प्रणाम कर सैनिक से प्रणाम करके वहाँ पर बैठो तन बाण बाण मतलब बाणी को द्वारा फिर जो कथा हम श्रवण करते हैं वैष्णव को मुखार विद से पुनर्वास को प्रायण कर दूसरों को सुनाओ आज हमने कितनी बढ़िया कथा सुनी इतनी अच्छी कथा सुनी है बस दूसरों को कथा सुनाओ मैं भी और कथा को दूसरों द्वारा सुना फिर मन को द्वारा सुना मतलब एकांत में एकाग्र चित्त होकर के ये कथा को श्रवण करो अगर कोई ऐसे वैष्णव के साथ में अगर ये भगवत कथा को कोई श्रवण करेगा तो उसको क्या होगा फिर वो भगवान अजीत होने पर भी जिस भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है बहुत ही कठिन लेकिन अजीत इसलिए उनका नाम अजीत है इसलिए इतना बहुत कठिन लेकिन इस अजीत भगवान को भी अगर किसी शुद्ध वैष्णव को मुखारविंद से अगर कथा सुनते हुए अगर ये जीवन को अगर तुम्हारे करे तो एक अजीत भगवान भी वो कथा पर अजीत बन जाए मतलब भगवत प्राप्त तो अजीत को प्राप्त हो जाता है इसलिए जब यह श्लोक को सुने तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताए भले यह कुमार अभी तो लाने में आ रहे हो भक्ति ऐसे श्लोक तो होती है क्योंकि जब तक जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक भगवत भक्ति को भगवत भक्त संग बन जाएगी भगवत की भक्ति केवल भगवत संग को ही भक्ति प्राप्त होना है और उसको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है अगर दिखा नहीं भले सार दिखा फूट लो पटल की चारों में सार पढ़ाई कर लो हाँ और पटल की पर्वत आने पर्वत को भी चढ़ जा और किसी को भी भगवत भक्ति पाने का कोई उपाय नहीं इसलिए रघु करने का तपस्या न जाति न विजया न विवाह न गृहत्वा न एव छंदसा न एव जलाग्नि बिना महत्पदो रजो विषकम् जब तक ऐसे शुद्ध भक्तों का चरण धूलि के द्वारा हम अपना जीवन को अभिषेक नहीं करते कहते हैं रावण ने तपस्या और तपस्या से भगवान नहीं मिलेगी नर जाति बहुत बड़े कुल में जन्म हो गए, उसको द्वार भी प्रभु नहीं मिलते हैं, ना इसे आपको पूजा पाठ कर रहे हैं उसको द्वार भी नहीं मिलेंगे, ना निकाह ना गृहस्थ दरबार सोचा कर साधु सन्यासी बन गए उससे भी प्रभु नहीं मिलेंगे, नहीं वह शंकर शास्त्र वेद पढ़ लिया उसको द्वार भी नहीं मिलेगा, नहीं वह जला खूब जल अग्नि मंच जाकर बैठे उसको भी द्वार नहीं मिलेगा, सात वो सात चीज को बना कर दिया, अगर मिलेगा तो केवल शुद्ध वैष्णव का जन्म में जब तक हम अभिषेक नहीं होते हैं उनका चरण पर जब तक हम आश्रय नहीं करते उनका अनुरोध जब तक स्वीकार नहीं करते शास्त्र सारी चीज को मना कर दिया, इसलिए इस चीज को सुन करके भगवान को प्रसन्न होते हैं। नए सांप्रति सावर पूरे भगवान दी श्री सरकार जो शुद्ध वैष्णव है वो हरि कथा नहीं बोलने पड़ेगी, कर जब वो बैठते हैं बैठते उनका शरीर से भगवत भक्ति की जो दिव्य चिंता निकला जो दिव्य जो भजन का जो शक्ति अपने आप उनको शरीर से निकलता है। अगर उनको पास में जब बैठ जाएंगे तो आप हृदय शांत हो जाता है अपने आप हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जलकर हम चाहते हैं महाराज जी ऐसे ही हम लोगों पर कृपा करते हुए पूरा जिंदगी हम जाते महाराज को साधने की दिशा में कभी छूटे नहीं। संपूर्ण हमारा जीवन देखे महाराज की चरण में उनका दर्शन सानिध्य संपूर्ण कर गीत गाते हैं जो धन्य है क्योंकि वैष्णव केवल रहने पर केवल उनका दर्शन केवल स्मरण मात्र से ही अपनी आप भगवत भक्ति हरि हरि गई अपनी आप हरि हरि गई। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं केदार महाराज से श्री महाराज जी को दीर्घायु प्रदान करे ये जब सानिध्य में संपूर्ण जीवन दे से
भजन और हाउ वी कैन डेवलप इन भजन व्हाट इज भजन
practical questions. And I was very amazed to see
receive, then in almost every single answer of at least 30 or so questions, Srila Prabhupada again and again and again, he stressed that, first of all, without sadhu sangha, it is never possible whatsoever, never, never, ever, to advance in bhakti, to attain liberation, to attain the lotus feet of Krishna. And especially, he stressed Guru Nishtha. Again and again, he was telling that without fully surrendering to Sri Guru, it is never possible, not for any conditioned soul, to ever get out of the clutches of Maya, to ever come into the path of bhakti, to ever approach the realm of Shiva bhakti or Vajra. So, the question was asked to him, something like, regarding sadhu sangha, how often should we be in sadhu sangha? And then Srila Prabhupada answered, at every second, at every second, we must be in sadhu sangha. He said that without sadhu sangha, because we are weak, because we are conditioned souls in this world, therefore without the shelter of sadhu sangha, it is absolutely certain that we will go astray, because our tendency of the conditioned soul in this world is Krishna Bhakir Bhutta. Krishna Bhakir Bhutta. Each conditioned soul has turned away from Krishna, has turned away from his eternal constitutional position of being the servant of Krishna. So in that condition, now the conditioned soul is thinking, how can I become happy? Always he is thinking this one thought. How can I become happy? How can I make myself happy? But this is actually the root cause of all the suffering of the conditioned souls in this world. We have this selfish interest to enjoy matter. We do not see that ultimately everything within this creation is Isha Asinikam Sarva. It is the energy of Bhagavan. It belongs to him. It is meant to be used to serve him. So Srila Prabhupada stressed that when we can see every single entity and every single object in this creation as being enjoyable by Krishna, that it is for him to enjoy. Every person and everything within this world is for him to enjoy. Then and only then will we be able to actually enter into the realm of our natural serving mood, pure Shuddha Bhakti. So when we are in a diseased condition, and we therefore look at the objects of this world to be for our own happiness. So therefore, the first step that any conditioned soul must take, absolutely essential, he must see and he must recognize and he must fully accept that Sri Guru Dev is the direct Sakshat Haritena, direct manifestation of Bhagavan, who has come to me. And by serving him, by making him happy, by utilizing everything for him, by surrendering everything to his lotus feet, then we can develop a service mood toward Bhagavan, not the opposite. We cannot take the first step. In other words, we cannot directly serve Bhagavan. It is not possible for us. Therefore, he has come in this very approachable form of Sri Guru. And how do we serve Sri Guru? How do we connect with Sri Guru? That Srila Prabhupada also explained by quoting in Bhagavad Gita 4th chapter, verse 34, the famous verse, Tadhi Pratipati, Pari Krishna Sevaya she did everything to him, not partially withholding. To the degree that we withhold from Guru, that is the degree to which we are maintaining our independence from Bhagavan. To the degree that we are withholding our own possessions, that means either our very own self, our very own body, our very own mind. To the degree that we are withholding that from serving to the lotus feet of Guru, to that degree, we are maintaining our independence from Bhagavan. So therefore, the first step for the conditioned soul is to begin to offer himself to the lotus feet of Sri Gurudev, and then in that very, very submissive mood, now to hear Harikatha from him. Again and again, in these answers, Srila Prabhupada was stressing, one has to give his ear to Sri Guru, but not external. He must give his internal heart through that very process. And that is only possible if someone is actually surrendering himself to Guru and considering that I do not belong to me, I belong to Sri Guru. And Sri Guru is my only possession in this world. I have nothing in this world. Only I possess my Gurudev. So that sense of Mamata, feeling that Sri Guru is as dear to me and millions of times more dear to me than anyone in this world, than my own mother, my own father, my own children, my own husband and wife, Sri Guru is my all in all. And when we feel that sincerely, truly, to the depths and the core of our hearts, then we can say that we are actually surrendering to Sri Guru and accepting him as our dear, most well-wishing friend. And then finally, seva. If we utilize all of our energy for the purposes that Sri Guru wants to utilize us, not that we decide what we want to do, but we await Sri Guru's instruction, and even we anticipate, what does Sri Guru in his own heart, what does he desire? He has made it so clear by his instructions. So to anticipate, to understand the Manavisha of Sri Guru, and to automatically go and serve that Manavisha, this is called Guru Seva. So by doing this, Srila Prabhupada is telling that definitely one will be able to purify his whole consciousness completely from all anarthas, from all attachments within this world, both subtle and gross, and especially the desire for pratishtha, to be important, to have domination over others. And Srila Prabhupada stressed, Janara Bhisani Jaina, Tanara Bhisani Shina. He said it is only possible to follow this slope when one is fully surrendered at the lotus feet of Sri Guru. So this is the path of doing one-pointed bhajan by having one-pointed Guru Nishtha in Guru. And then the whole pathway of bhakti will open up. This verse also Srila Prabhupada quoted, and this is the theme of the devotee's life. That I will give myself fully in pure devotion to Guru and equally to Sri Bhagavan. Only in this way will all realization of all Vedic knowledge come within my heart.
Only kai kirtan karo. Mike. पुस्तक निकाल लो, बिना पुस्तक निकाले कीर्तन नहीं कर सकते.
Bhajan Sri Hari.
बराबर हम यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, जाओ मत करो गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पद्म के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण, वैष्णवी और सज्जन, अभी नवदीप धाम की परिक्रमा हुई जिसमें 17-18 हजार लोग देशी विदेशी आए, कोई भी बाधा नहीं हुई, निर्विघ्न समाप्त हुआ। प्रचुर हरि कथा हुई, हरि कथा ही भक्तों के लिए प्राण है। हम सब लोग कोई सन्यास ब्रह्मचारी होकर के मठ में आए हैं, कोई गृहस्थ आश्रम में स्त्रियां या पुरुष रह करके भी भजन कर रहे हैं, किंतु उन लोगों के लिए सबसे पहला ये जानना जरूरी है हम जो भजन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर भजन। पहले किसी चीज का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए ये काम करते हैं, जान ले होता है, तब किस उपाय से उसे पाया जाएगा पीछे स्थिर होता है। उद्देश्य ही नहीं स्थिर हुआ तो फिर वो करेगा क्या। इसलिए सबसे पहले आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद् धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजुबधु बरगे न जा कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रा गुरु न। इस श्लोक में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने किसी भी भजन परायण व्यक्ति का जो चैतन्य महाप्रभु की लाइन में, रूप गोस्वामी की लाइन में आया है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए बतलाया है। हम सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के मत को स्थापन करने वाले श्री रूप गोस्वामी की लाइन में आए हैं। हमारी गुरु परम उनकी गुरु परंपरा में हम लोग हैं शिष्य। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, हम लोगों के आराध्य ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। कृष्ण वृंदावन में भी हैं, मथुरा में भी हैं, द्वारका में भी हैं। यहां कह रहे हैं जिनके माथे पर मोर मुकुट नहीं है, हाथों में बंसी नहीं है, जो देवकी नंदन मैं देवकी का पुत्र हूं, वसुदेव जी का पुत्र हूं, ये अभिमान है, वे कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है। वे गोपियों के साथ में रास इत्यादि नहीं कर सकते। इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, यशोदा मैया के गर्भ से जो प्रकटित हुए हैं, जिनके माथे पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है, जो कहते हैं कि हमारी मैया यशोदा जी पिताजी हमारे नंद बाबा हैं, वो हमारे आराध्य हैं। वृंदावन जहां नहीं है वहां कृष्ण नहीं है, मथुरा द्वारका में ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, वे नारायण रूप में वहां है। जिस प्रकार से कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वृंदावन धाम भी हमारा उसी प्रकार से आराध्य है, क्योंकि वृंदावन के अतिरिक्त कृष्ण की गोपियों के साथ में यशोदा मैया का वात्सल्य, जिसमें उन्होंने कृष्ण को उखल से बांध दिया था, उनको आज तक कोई बांध नहीं सका, किंतु यशोदा मैया ने अपनी प्रेम की डोरी से कृष्ण को जकड़कर बांध दिया। डांटती है, फटकारती है, चोरी करता है, माखन चोरी करता है, आज घर में ही तुमने माखन चोरी की, इस तरह से डांटती है, डपटती उस परब्रह्म को, और परब्रह्म कृष्ण वो रोते हैं, यहाँ जान पूछ कर रोते हैं, कोई आर्टिफिशियल रूप में नहीं। इसलिए वृंदावन धाम भी हमारा आराध्य। अब आता है हमारा उद्देश्य, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद् धाम वृंदावन रम्या काचित् उपासना भजुपदुवर्गेण जातुकम्। हमारे भजन का उद्देश्य यही है, क्या? रम्या काचित् उपासना भजुपदुवर्गेण जातुकम्। वृंदावन में, ब्रज में गोपियों ने जिस पद्धति से कृष्ण की आराधना किया था, उनको वशीभूत किया था, वो आराधना रम्या अत्यंत मनोहर और सर्वोत्तम है। इसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं, कृष्ण उसका ऋण नहीं चुका सकते। न पारे हम निरवध्य संजुजा प्रसाद कृत्या विविधा जुषा पिवा मां भजन दुर्जर गेह शृंखला संप्रिश तद्वस्मति साध साध साध। कृष्ण कहते हैं कि मैं गोपियों का ऋण ब्रह्मा की आयु पाकर के हजारों हजारों जन्मों में मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता, किंतु गोपियां बड़ी साधु हैं, वे भले ही हमें ऋण से उन्मुक्त कर दें, किंतु मैं तो उनका चीर ऋण ही रहूं। इस प्रकार गोपियों के चीर, और राधिका की तो बात ही क्या है, सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के साथ में अंतर ध्यान हो गए रास से। इसलिए राधा जी की उपासना तो और है, इसको ग्रहण कोई जीव नहीं कर सकता। इसलिए रम्या काचुत उपासना बजुबध भर गए निजा कर, गोपियों के साथ में कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ। जहां विवाह होता है वहां पर पति और पत्नी में संबंध दास और दासी का होता है, गोपियों के साथ में कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, गांधर्व विवाह जैसा हो सकता है। इसलिए कृष्ण वृंदावन में केवल 12 वर्ष 10 वर्ष की उम्र तक रहे, उनका यज्ञ पवित्र नहीं हुआ वहां, बिना यज्ञ पवित्र के ब्राह्मण वैष्णव और क्षत्रियों के वैश्यों के उपवीत हुआ बिना शादी नहीं हुई, इसलिए उनकी शादी वहां नहीं हुई। उनका संबंध क्या था? कृष्ण मेरे प्राण बल्लभ है, गोपाल मंत्र का यही अभिप्राय है। गोपियां हम कहते हैं कृष्ण हमारे प्राण बल्लभ है, और कोई उनके साथ में संबंध नहीं है। परम्या काचित उपासना उपपति भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं। पति भाव में दास भाव होता है जो भरण पोषण करता है। कृष्ण गोपियों का भरण पोषण नहीं करते, कुछ भी नहीं देते, प्रेम की डोरी से केवल बंधे हुए हैं। इसलिए उपपति भाव से कृष्ण की वो आराधना करती हैं गोपियां, जिसके द्वारा वो वशीत हो जाते हैं। रम्या काचित उपासना बजुबध वर्ग, यही जीव मात्र का इसी में अधिकार है। इसी को स्पष्ट करके चैतन्य चैतामृत में बतलाया गया, अनर्पित चरिन चिरात करुणे अवतीर्ण कर समर्पयी तुम उन्नतोज्जल सांसी भक्ति। हरिह पूर सुंदर द्योत कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत में सचिन। समर्पयी तुम उन्नतोज्जल रसम, कृष्ण राधा जी का भाव और कांति लेकर के सचिनंदन के रूप में जगत में प्रकट हुए। उनके अवतार का कारण यही था। समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसन, उन्नत उज्ज्वल रस पार्थिव उपपति भाव को कहते हैं। समर्पयी तुम देने के लिए क्या, उन्नत उज्ज्वल रसान स्व भक्ति श्रीयम। जिस प्रकार से लताओं में पत्ते और मंजरियां होती हैं, हवा के झोंके में जबकि मंजरियां ऐसे ऐसे करती है, हिलती हैं, उसकी शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही राधिका जी मूल सखी हैं, सखियां उनकी पत्तियां हैं और उपमंजरी इत्यादि उनकी मंजरियां हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मंजरियों की राधा कृष्ण की सेवा में इतना अधिकार है कि वहां पर ललिता विशाखा भी नहीं पहुंच सकती, इतना अधिकार ऊंचा है इन दासियों का। इसलिए समर्पयी तुम रसान स्व भक्ति श्रीयम। स्व मने राधिका की दासी मंजरियों का भाव जगत को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। इसके पहले लोग रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बादित्य आचार्य इत्यादि और भी सब लोग भक्ति दिया, भक्ति रस नहीं दिया। उपपति भाव को लोग अत्यंत घृणा समझते थे, किंतु रूप गोस्वामी ने उनके उज्ज्वल नील मणि ग्रंथ में शास्त्रों से प्रमाण लेकर के कहा, जहां पर कि लौकिक लोग नायक और लौकिक स्त्रियां पार्थिव भाव से यहां पर भजन होता है, संबंध होता है उपपति का, वहां तो बहुत खराब है, यह नहीं होना चाहिए, सर्वत्र इसकी निंदा की गई है। किंतु जहां पर कि पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण उपपति हैं और उनकी अपनी शक्ति, उनकी जो शक्ति है लादिनी शक्ति, उसके साथ ये राधा जी हैं और उनके काय व्यूह गोपियां हैं, जहां पर कि कृष्ण की उपपति भाव से उपासना करने वाली हैं, वहां पर दोष नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, निज रूप तया गवा भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता भी ताभी जयेव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदवादि पुरुषम तमह भजा। कृष्ण की अपनी शक्ति है, उनकी काय भी हुई ललिता विशाखा इत्यादि सब गोपियां हैं, तो जहां पर कि कृष्ण स्वयं नायक है आज यहाँ पर स्वयं कृष्ण ही गोपी बन करके, कृष्ण क्या है, राधा जी उनके वाम अंग अंग से निकली हुई है, इसलिए गोपियां भी कृष्ण ही है। तो कृष्ण का कृष्ण के साथ में अराश इत्यादि यह गलत काम नहीं है, उन्होंने सब प्रमाण किया है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम, श्रीमद् भागवत में इस विषय में प्रमाण है, पति सुतान्वय भक्तिबंधवान अति विलंघते अंत अच्युतागता, अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए चली गई, इसलिए यहां पर उपपति का भाव है, पतियों को छोड़ करके नहीं। और भी गीत भागवत में बहुत से इसके प्रमाण, सारा भागवत उसी का रास पंचाध्यायी ये प्रमाण है। चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु और मतम इदम, यही चैतन्य महाप्रभु का मत है, तत्र आदरो इसी का आदर करो, दूसरे मत का आदर मत करो। ये तो हुआ उद्देश्य, क्या मंजरिया का भाव राधा दास, अब प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन शिक्षा में और उपदेश अमृत में बताया, यदि चाहते हो तो यहां से आरंभ करो, त्रिनादपि सुने चेन तरोरपि सही सुनना अमानी न मान देना कृतनीय सदा, त्रिनाद अपि सुने चेन, तीन से भी अधिक दीन ही, तीन पर पैर रखने से पैर उठाने के बाद में फिर वो उठ जाता है, वैष्णव लोग इससे भी, तरोरपि सही सुना, वृक्ष जैसे मारने पर भी पत्थर देता फल देता है, अपना छाल अपनी लकड़ी अपनी छाया उसके लकड़ी से पलंग इत्यादि लोग बना करके व्यवहार करते हैं, उसके पत्ते का रस लेते हैं, उसके सभी कुछ परमार्थ के लिए है, उस प्रकार से हमारा जीवन भी परमार्थ के लिए हो, अपना कोई योग्यता रहने पर भी गुण रहने पर भी अपना सम्मान ना चाहना चाहिए, जथा योग्य दूसरों का सम्मान करना चाहिए, ये जब होगा तब भजन होगा, और साथ ही साथ में रूप गोस्वामी का मनसो वेग मनसो वेग क्रोध वेग इसको पहले आरंभ करना पड़ेगा। समस्त खुराफातों की जड़ मन है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष है, मन कंट्रोल में हो गया तो सारी इंद्रिया कंट्रोल में हो जाए, मन कंट्रोल नहीं है, मन में तरह तरह के डिजायर हैं, कामना वासनाएं हैं, मन घूमेगा, एकमात्र कृष्ण की सेवा राधा जी की सेवा ही अभीष्ट है, मन कंट्रोल हो जाएगा, मन में कंट्रोल करना, वायु को कंट्रोल करना सहज है किंतु मन को नहीं। यदि भजन करना चाहते हो तो क्रोध को छाड़ो, काम एष क्रोध एष, यहां पर संसारिक भोग लालसा है, कामना है, उसके पूर्ण नहीं होने पर क्रोध हो जाता है, कामना ही मत करो, कामना कृष्ण की सेवा हो, भक्ति कैसे बढ़े ये हो, इस तरह से यदि क्रोध होगा बुद्धि बिगड़ जाती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है, और विनश्यति उनका विनाश हो जाता है। अधिक मत खाओ, अधिक पुष्टिकारक मत खाओ, खाने से काम का वेग रोका नहीं जा सकेगा, कौन सा होना, इसलिए इन वेगों को सहो, वैष्णव का संग करो, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति भोज्य भोगयते चैव षड्विधम तिथि लक्षण। साधु संग करने से नहीं हो जाता, साधुओं के साथ में रहने से नहीं होता, कैसे होगा? ददाति, अपनी प्रिय चीज गुरु वैष्णव को दो, वो जो कुछ देते हैं उसको ग्रहण करो प्रसाद के रूप में। गुह्यम पृच्छति, भक्ति की गुह्य बातों को उनसे पूछना चाहिए। हमारा गीता, भागवत, चैतन्य चैतन्य इत्यादि प्रश्न और उत्तर के रूप में है। बिना प्रश्न के साधक ऊपर नहीं उठ सकता। वो गीता का है ना श्लोक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। परमार्थ को लाभ करने के लिए प्रश्न ही एकमात्र, वो भी प्रश्न कैसे, यदि मैं योग्य हूं तो कृपया बतलाया जाए, इस प्रकार से। और जो कुछ हमको प्रिय है खाने प्रसाद के लिए, भगवत प्रसाद गुरु को देना, वैष्णव को देना, और उच्छिष्ट रूप में वो जो देते हैं उसको ग्रहण करना, ये साधु संग। भजन में मन नहीं लगने से भी, हरिनाम में मन नहीं लगने पर भी बार बार उसको करते रहो, एक दिन उसमें रुचि हो जाएगी। तन्नाम रूप चरितादि सुकत तनानु कमेन रसना मनसे नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलाम इत्युपदेश सारम। यही अंतिम और समस्त उपदेशों का सार है, चैतन्य महाप्रभु के मतों का, रूप गोस्वामी के मतों का यही सार है। तन्नाम रूप चरितादि, कृष्ण के जो नाम है मुख्य नाम, राधाकांत, गोपीकांत, नंदनंदन, अगर दमन जसोदा नंदनौ नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र बिंदावनंद्रा, ये सब नाम है। ये नामों को करो और साथ साथ उन नामों के साथ में जो लीलाएं हैं, जैसे दामोदर नाम है, दामोदर धाम बंधन की लीला का स्मरण करते हुए, रास बिहारी जब नाम लेंगे तो रास जो किया उसका चिंतन करते हुए, नंदनंदन है उनका चिंतन करते हुए नाम करो, मनसा नियोज्य नाम करो और उनके साथ में मन से उनकी लीलाओं का भी स्मरण करो। ब्रज में रहो, यदि भजन करना है तो ब्रज में रहो, और यदि नहीं रह सकते तो मैं ब्रज में हूं, जहां भी रह करके मैं ब्रज में हूं इसका चिंतन करते हुए भजन करो। नाम रूप चरितादि सुकृत नानु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी, किंतु ब्रज में रहने से ऐसे नहीं होगा। रूप गोस्वामी के जो अनुगत वैष्णव है, तदानुरागी तदान अनुगामी तदानुरागी, उनके अनुगामी किसके, रूप गोस्वामी इत्यादि के, महाप्रभु के, और तदानुरागी कृष्ण के पति जिनका अनुराग है, ऐसे भक्तों के सेवा में आनुगत्य में भजन करो, यही समस्त उपदेशों का सार। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, चलते फिरते उठते बैठते जोर से धीरे धीरे नाम करो, और दीक्षा में जो मंत्र दिया है प्रतिदिन तीन बार उसे जरूर करो, यदि नहीं करोगे भजन नहीं हो। यही सब भजन के रहस्य हैं और यही भजन का उन्नत एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा समझ करके, जीवन का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य समझ करके साधन भजन में करो, यही हमारा अंतिम वक्त है। गौर प्रेमानंद महामंत्र।